रविवार 7 अगस्त दिन भर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। गुजरात में विजय रूपाणी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। नितिन पटेल बने उप मुख्यमंत्री। 22 और विधायकों को मिली कैबिनेट में जगह।
विजय भाई रमणीक लाल रूपाणी,
ईश्वर ना नामे सौगंध लाऊं छू,
ईश्वर ना नामे सौगंध लाऊं छू के।
लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकली गोरक्षकों पर दिया बयान। राज्य सरकारों से सख्त कार्रवाई करने को कहा। संडे दिनभर में आज सुनिएगा मशहूर लेखिका महाश्वेता देवी से 18 साल पहले हुई बीबीसी की खास बातचीत।
जब एक केस फाइल किया तब मेरा सोच हुआ एक केस के एक जनजाति के लिए क्यों करे, पूरा भारत में जितना है एक सर्वभारतीय मंच गठन करे।
खबरें होंगी रियो ओलंपिक से भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। विजय रूपाणी ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। रूपाणी ने आनंदी बेन पटेल की जगह ली है। आनंदी बेन ने इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। नितिन पटेल समेत 8 कैबिनेट मंत्रियों और 16 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, बाकी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन कथित गौरक्षकों को कड़ा संदेश दिया है। मोदी ने तेलंगाना के मेडक में कहा कि कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में तनाव फैलाना चाहते हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वो नकली गौरक्षकों की लिस्ट तैयार करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मोदी ने कल दिल्ली में कहा था कि 80% गौरक्षक गोरख धंधों में लिप्त हैं। बीते महीने गुजरात के ऊना में 4 दलितों की पिटाई के बाद से गौरक्षकों की गतिविधियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फ्रांस के नीस शहर में बीते महीने हुए हमले के बाद लोगों की याद में आज आयोजित समारोह में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस हमले में 85 लोगों की मौत हो गई थी। समारोह में जुटे लोगों ने मारे गए लोगों की याद में फूल चढ़ाए। कार्यक्रम में सभी मरने वालों के नाम पढ़े गए। इस मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, ये एक व्यवस्थित कार्यक्रम था। हमले में मारे गए लोगों की याद में नीस में एक पार्क से गुब्बारे छोड़े गए। ये बहुत भावुक कर देने वाला पल था। इस जगह दोबारा आना और कार्यक्रम में हिस्सा लेना अलग अनुभव है। ये थे नीस के समारोह में शामिल हुए एक व्यक्ति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड के चुनाव आयोग के मुताबिक देश के मतदाताओं ने नए संविधान को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक देश की राजनीति में सेना का दखल बना रहेगा। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि नए संविधान के पक्ष में 60% से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया है। 2 साल पहले देश की सत्ता पर काबिज होने के बाद सेना ने पुराने संविधान को खारिज कर दिया था। सेना का कहना है कि नए संविधान से थाईलैंड में स्थिरता आएगी। सीरिया के अलेपो शहर से मिली रिपोर्टों के मुताबिक विद्रोही सेनाएं सरकारी सेना की घेरेबंदी तोड़ने में कामयाब रही हैं। इसके बाद विद्रोहियों के प्रभाव के इलाके तक थोड़ी मदद पहुंच सकी है। सब्जियों से लदी एक लॉरी पूर्वी अलेपो पहुंची है। हालांकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये रास्ता आम लोगों के इस्तेमाल के लिहाज से बेहद जोखिम भरा है। उधर सरकारी सेना ने विद्रोहियों के दावे को खारिज किया है। नाइजीरिया की सेना के मुताबिक बोसों में घात लगाकर हुए हमले में कम से कम 11 सैनिकों की मौत हो गई। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक सेना सशस्त्र अपराधियों के ठिकाने पर छापे की कार्रवाई कर रही थी, तभी यह हमला हुआ। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। दिनभर की शुरुआत में चलते हैं गुजरात, जहां आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ 22 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। पूरा ब्यौरा सुनिए अशोक कुमार से।
नाम बोलिए। विजय भाई रमणीक लाल रूपाणी,
ईश्वर ना नामे सौगंध लाऊं छू,
ईश्वर ना नामे सौगंध लाऊं छू के।
हूँ गुजरात राज्य ना मुख्यमंत्री तरीके,
हूँ गुजरात राज्य ना मुख्यमंत्री तरीके,
जे कोई बाबत मारी विचार।
गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राज्यपाल ओपी कोहली ने विजय रूपाणी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उस समय वहां वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। विजय रूपाणी के तुरंत बाद ही उप मुख्यमंत्री के रूप में नितिन पटेल ने शपथ ली।
श्री नितिन कुमार रतिलाल पटेल ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ।
नितिन पटेल को पहले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विजय रूपाणी की नजदीकी भारी पड़ गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय रूपाणी ने कहा कि वो कैबिनेट से जुड़े मामलों पर एक दिन बाद चर्चा करेंगे।
शपथ विधि सम्पन्न हुई है, कल कैबिनेट की मीटिंग होगी और सबके साथ बैठकर आने वाले दिन का काम हम तय करेंगे, वो कल तय करेंगे।
विजय रूपाणी को आनंदीबेन पटेल की जगह प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। आनंदीबेन पटेल के पार्टी प्रमुख अमित शाह से अनबन की बात सामने आई थी। रूपाणी के साथ ही नई कैबिनेट के लिए चुने गए सदस्यों में अमित शाह की मर्जी को ही प्रमुखता दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। विजय रूपाणी के साथ कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली। आनंदीबेन पटेल के करीबी समझे जाने वाले 9 मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। राज्य में पढ़ाई और नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन पर उतारू पाटीदार समुदाय के कुल 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया है।
गुजरात में आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। रिपोर्ट सुना रहे थे अशोक कुमार। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर देश में नकली गौरक्षकों को निशाने पर लिया है। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना के मेडक में थे, जहां वो एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के सामाजिक ताने बाने पर चोट पहुंचाने वालों को कड़ी चेतावनी दी और राज्य सरकारों से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
जो लोग समाज के ताने बाने तोड़ने पर तुले हुए हैं, जो लोग समाज को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं, जो लोग हिंदुस्तान की एकता की बात से परेशान होते हैं, ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। और इसलिए मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे नकली गौरक्षकों की छानबीन कीजिए, उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए।
और अब अगली खबर, ये आवाज़ थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मेंढक में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने जो नकली गौरक्षक हैं उन पर निशाना साधा है। और आपको बता दें कि एक दिन पहले दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने कुछ इसी तरह की बात कही थी। प्रधानमंत्री मेंढक में थर्मल पावर स्टेशन की आधारशिला रखने गए थे। यहाँ पर उन्होंने एक पाइप के जरिए पानी सप्लाई करने के तंत्र का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा कई और परियोजनाओं को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं संडे दिनभर निखिल रंजन के साथ। कोलकाता से उठी एक आवाज ने कलम का सहारा लेकर बहुत लंबे समय तक दलितों और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी। ये आवाज थी महाश्वेता देवी की। 90 साल की उम्र में पिछले दिनों उनका निधन हो गया। महाश्वेता देवी साहित्य की दुनिया में जितना बड़ा नाम थी, उतनी ही बड़ी ख्याति उन्हें समाज के निचले तबके के लोगों के संघर्ष में शामिल होने से मिली। साल 1998 में बीबीसी संवाददाता ललित मोहन जोशी ने कोलकाता में उनसे मुलाकात की और दोनों के बीच एक लंबी बातचीत हुई। आज संडे दिनभर में हम आपको वही बातचीत सुनवा रहे हैं।
सुनने वालों को ललित मोहन जोशी का नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपकी भेंट करवाते हैं भारत की एक महान विभूति महाश्वेता देवी से। मैगसेसे अवार्ड तथा भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित महाश्वेता देवी जी की रचनाशीलता का सबसे बड़ा औजार है विश्वसनीयता। साहित्य सृजन के साथ साथ महाश्वेता जी का जीवन आदिवासियों के अधिकारों के संघर्ष के लिए समर्पित रहा है। महाश्वेता जी से मैंने ये मुलाकात कुछ समय पहले कलकत्ता स्थित उनके निवास पर की थी। मेरा सवाल था, महाश्वेता जी, आपका साहित्य आदिवासियों के दर्द का आईना है, क्या आपको अभी भी लगता है कि इन पर अत्याचार हो रहे हैं?
मेरा लगता नहीं, ये फैक्ट है। मैं तो एक क्रिमिनल ट्राइब लेकर काम करती हूँ जो डिनोटिफाइड है। एक को मार दिया पुलिस, बहुत बेरहम से मार दिया। इसीलिए मैं हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया। जब एक केस फाइल किया तब मेरा सोच हुआ, एक केस के एक जनजाति के लिए क्यों करे? पूरा भारत में जितना है एक सर्वभारतीय मंच गठन करे। और एट्रोसिटी केसेस हम लोग कलेक्शन कर रही हूँ, वो सब लेकर 99 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी, उधर केस करूंगी। क्या 52 में तुम उसको डिनोटिफाई किया, अभी तक उनको ऐसा ही बेरा हमसे मार रहे हो, किसी का पास जमीन नहीं है। आपके मालूम है क्या, महाराष्ट्र में करकू नाम का एक ट्राइब है, वो बहुत बिना एकदम खाने नहीं मिलता, इसलिए एकदम छोटा हो गया। और कलेक्टर ने बोल दिया वो लोग कंजेनिटली अनफिट टू सर्वाइव।
महाश्वेता जी, इतना बड़ा जो एक राष्ट्रीय अभियान आप छेड़ रही हैं, आपका इतना, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, आपको नेल्सन मंडेला ने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया, आपको सारा भारत जानता है, मंत्री और केंद्रीय मंत्री सब आपसे सहमते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपके इस पूरे अभियान की योजना पर किस तरह से प्रतिक्रिया कर रही है इस समय?
वो मैं कभी नहीं सोचती हूँ, ये लड़ाई है। जो लड़ाई सबसे पहले शुरू करना ठीक होता, वो लड़ाई शुरू किया नहीं गया। 2.5 करोड़ इंडियंस, दे आर इन बॉन्डेज, दे आर किल्ड एवरी डे, किसी का पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कोई को क्रिमिनल एक्टिविटीज में रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो क्राइम ना करे तब जो क्राइम करता है उससे 50% पुलिस का मिलता है और 45% मिलता है जो पॉलिटिकल जो सब मस्तान होता है उन लोग का, 5% उनमें बांट जाता है। जो क्राइम छोड़ने चाहता है उसका पर मार बहुत जोर आता। तो ये जो मैं नेल्सन मंडेला से मैं ज्ञानपीठ लिया, ठीक है, मुझको मैग्सेसे मिला, ठीक है, उसके साथ ये लड़ाई का क्या है? जब वो मिला था कोई कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि वो लेके बैठ जाऊँगी और ये लड़ाई नहीं लड़ूंगी। बॉम्बे में गोपीनाथ मुंडे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर भी है, उसका बहुत प्रार्थना थे कि मैं महाराष्ट्र साहित्य सभा में जाऊं, मैं जा रही है। लेकिन अब मैं उनको बोला काल क्या परसों, ये पारधी ट्राइब को 25 घर जलाया, इसका क्या होगा? उन्होंने बोला महाश्वेता देवी जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। उन्होंने प्रमिस किया 25 घर बना जाएगा, 50 स्कूल हो जाएगा और रुपया की सहारा भी देगा। ये सब करके बेला 2 बजे हम लोग प्रेस में प्रेस मीट करके सब बोल दिया। नेक्स्ट दिन सब कुछ पेपर में चला आया, अभी गुजरात का पेपर में आया, आंध्र का पेपर में आया, मुंबई का पेपर में आया। उसके बाद शाम को मिला पारधी लोग को जिनका घर जल गया था, सब कोई आया था। तो गविन निहालनी से मुझको फिल्म 1084 बनाया, मेरा 25,000 रुपया मिलने का था। मैं उनको बोला कृपया ये 25,000 इधर लेके आओ कैश में, वो ले आया, हम दे दिया। और वही रात
किसको दे दिया?
पारधी लोग को, आप किसी को दें रुपया किसके लिए? मेरा रुपया कभी मेरे के लिए नहीं होता, आदिवासी लोग के लिए होता।
आपने बहुत कुछ साहित्य रचा है, आपने फिक्शन लिखा है, उपन्यास लिखे हैं, पर उपन्यास के पर्दे के पीछे आपने सच लिखा है, इतिहास लिखा है, तो ये करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
मैंने तो कुछ पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ इफ आई हैव स्टडीड एनीथिंग आई हैव स्टडीड पीपल। आदिवासी को पास मैं क्यों चला गया ना, तो मैं तो बड़ा नदी नहीं हूँ, गंगा क्या जमुना ऐसा बड़ा नदी नहीं हूँ, मैं छोटा पहाड़ी नदी हूँ, छोटा पहाड़ी नदी, छोटा पहाड़ी नदी से ही मिलता है, ऐसा ही बहुत नेचुरल से हुआ, इसमें कुछ प्रयास करने नहीं पड़ा।
मतलब मुझे एक चीज़ जो बड़ा विस्मय में डालती हुई यह है कि आप अपने ज्ञान से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से बहुत पैसा कमा सकती थी, बहुत आराम की जीवन व्यतीत कर सकती थी, और आप बिल्कुल एक सादा जीवन व्यतीत कर रही हैं आज के 20वीं शताब्दी के अंत की ओर, ऐसा क्यों कर रही हैं आप?
क्यों नहीं कर रही, आप अपनी समझते हैं, मेरे लिए इसके पहले 75 में मैं एक कोठी में आई हूँ ना, इसके पहले ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बंगाली का लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा ही था, मैं उधर से नहीं हटा, नहीं पिसला, मेरा ऊपर एक छात है, मैं दो दफ़े खाना खा भी सकते, खिलाने भी सकते, हाँ इससे ज़्यादा कोई भारतीय का कुछ आप क्या मिलने का है, ठीक ही है।
आपने जो एक शुरुआत जो की थी वो झांसी की रानी से की थी, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास उसको कहा जा सकता है, झांसी की रानी ही से क्यों आपने शुरुआत की?
झांसी की रानी से इसीलिए शुरुआत किया, उस टाइम बॉम्बे में थे, सावरकर की किताब पढ़े, उसके बाद जो मुझको स्ट्राइक किया झांसी की रानी का लीडरशिप में, सेंट्रल इंडिया में जो रेबेलियन हुआ उसमें पूरा जनजाति, आदिवासी हो क्या नहीं हो, सबको ही शामिल थे, एक पीपल्स रेबेलियन था, इंग्लिश हिस्टोरियन भी वही बोलता है, सो इट इंस्पायर्ड मी, दैट्स व्हाई आई डिड इट, देन आई अंडरस्टूड दैट कलेक्टिंग हिस्टोरिकल मटेरियल फ्रॉम प्रिंटिंग मटेरियल ये ठीक नहीं होता है, वो लोग का अंदर में जाने का है, लोग गाथा लेने का है, तब झांसी चला गया, मैं कुछ नहीं जानते थे, 26 साल के 28 साल उम्र था, झांसी के बारे में मैं कुछ नहीं जानते थे, डाकी मानव सिंह अपारेट करते थे, लेकिन मैं तो ऐसा ही बुद्ध आज ही हूँ, कुछ नहीं जान से बाघ का मुंह में हाथ डालती हूँ, तो मैं चला गया उधर, और उधर उन लोग के साथ घूमते फिरते बहुत सुंदर एक कहावत सुना, पत्थर मिट्टी से फौज बनाई, काट से कटवार, पहाड़ उठा के घोड़ा बनाई, चली ग्वालियर।
वाह,
ये जब सुना तब मेरा महसूस हुआ क्या, जो ये सब निरक्षर आदमी इतना साल उनको ऐसे याद करते हैं, तब इनसे लेने का है, हिस्ट्री पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जनजातियों का जो इतिहास होता है जनजाति से लेने का है।
अच्छा ये बताइए, 1084 की माँ तो अब चर्चित हो रहा है क्योंकि गोविंद नलानी ने उस पर एक फिल्म बनाई है, आपकी ये एक सशक्त कृति है जो कि नक्सलवाद कैसे पनपा इस पर इसका एक जीता जागता चित्रण है, तो ये जो आपने उपन्यास लिखा ये क्यों लिखा आपने?
वो तो मेरा देखिए देश में बहुत कुछ हुआ जब मैं लेखक नहीं थे, जब पार्टीशन हुआ गाँव के बारे में मैं एक स्टोरी लिखते थे, जो भी पढ़ते थे क्या जानते थे, लेकिन कलकत्ता का रास्ता पर नक्सल का निधन शुरू हो गया, जेल में निधन, पुलिस फायरिंग, ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी से फायरिंग, किलिंग, ये बहुत चलता था, कलकत्ता एकदम लाले लाल हो गया, तब दोनों लड़का एक रात मुझको बोला, सब आप गांव के बारे में लिखते हैं लेकिन हम लोग शहर के रास्ते पर मरते हैं, आपको कौन लिखेगा मेरा बात, इसीलिए मैं लिखा था, और जब सिर्फ डॉक्यूमेंट किया था जो शहर में होता है, और मैं इतना राजनीति नहीं समझती थी, इसीलिए एक एपोलिटिकल अराजनीतिक माँ के दृष्टिकोण से वही किताब लिखा।
लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नक्सलवाद एक तरह से गैर कानूनी आंदोलन था और आपका जो 1084 की माँ है वो एक तरह से उसका समर्थन है।
मैं जीसी हो, जो प्रो पीपल अपराइजिंग हो, सब कुछ को समर्थन करते हैं, ये मैं कभी नहीं छिपाया, मेरा जितना किताब है उसमें मैं विद्रोह को ही समर्थन किया, जब वो ठीक कारण से विद्रोह होता है।
अच्छा ये बताइए कि 1084 की माँ जो गोविंद नलानी ने बनाया है उससे आप खुश हैं या खुश नहीं हैं?
मैं तो बहुत समर्थन किया, मैं बहुत खुश हूँ, निहालनी ने कभी एक भी कुछ संयोजन नहीं किया जो मेरे साथ कंसल्ट बिना, क्योंकि देखिए लिटरेचर का लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, फिल्म लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, फिल्म उनका इलाका है, उसमें मैं कैसे इंटरफेयर करूँ।
उसको जब आपने देखा तो क्या आपके अंदर आपको मूव किया उसने?
आई वॉज ग्रेटली मूव्ड, आई लाइक्ड इट वेरी मच, आई स्टिल लाइक इट वेरी मच।
अच्छा ये बताएं कि 70 के दशक में आपका एक नया फेज आता है, जब आपने एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने उपन्यास या पुस्तक रची, अरण्य अधिकार जंगल के दावेदार, और ये आपका एक बहुत ही अहम उपन्यास बना जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ये दरअसल क्या रेखांकित करता है?
वो कुछ नहीं, आदिवासियों के बारे में मेरा यही वक्तव्य है, क्या आदिवासियों का जितना एंटी, आदिवासी कृषक का जितना एंटी ब्रिटिश फाइट था, उसके भारत के इतिहासकार कभी नहीं ए पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऐसे उसको नहीं दिखाया। आदिवासी लोग के साथ मेन स्ट्रीम का जो धारा चलता है वो पैरालल चलता है, किधर भी कोई मिलन के बिंदु नहीं है। आदिवासी और लोग है वो, कोई लिखा था ऑस्ट्रिच्स फॉर्म द बेडरॉक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, एंड मेरा पूरा से आदिवासी एक्सपीरियंस का जो सरासर है वो टेरोडैक्टिल नावल में मिलेगा, बहुत शॉर्ट नावल है उसमें मिलेगा। तो आदिवासियों को देखिए हम लोग से बहुत सुशभ्य है, बहुत सुप्राचीन है, संस्कृति है, सब कुछ उनमें है, हम लोग उनको कभी आदमी ऐसा सम्मान नहीं दिया।
आप में बहुत अभी स्फूर्ति है, बहुत आप में ऊर्जा है, ये तो हम लोग का सौभाग्य है, पर आप क्या कभी आपके मन में कुछ ऐसा विषाद नहीं आता कि इतना करने के बाद भी हम लोग नहीं चेते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या कुछ वाकई हो पाएगा कि नहीं?
ये मैं कभी नहीं सोचती हूँ, कभी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि एक जंगल के दावेदार लिखने का बाद बिरसा मुंडा का नाम इतना उठा, इतना उठा, पूरा भारत में आज बिरसा का जन्म जयंती पालित होता है। मैं जो देखती हूँ वही बताती हूँ, मैं कभी नहीं, ये आप जो निराश का बात करते हैं ये नैराश्य मुझे कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है।
अच्छा ये बताइए कि आप खाती क्या हैं, क्योंकि आप बोर्ती का मैगजीन भी निकालती हैं, आप भाषण भी देती हैं, आप लेक्चर भी देती हैं, और आप लोगों से जाके मिलती भी हैं और लिखती भी हैं, आप कौन से चक्की का आप आटा खाती हैं?
आपने तो मेरा भाई को मेरा साथ लाया, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा था जो डस्ट ऑन द रोड
जी,
तो मैत्र बता सकता उस वो पढ़ने आप समझ पाएंगे। देखिए मेरे लिए क्रिएटिव राइटिंग लिखना और वर्तिका का संपादन करना और आदिवासियों के लिए काम करना, क्या मैं न्यूज़पेपर में कलम लिखती हूँ, वो सब एक साथ, एक के साथ एक है, सब कुछ इंटर सस्टेनरी है, ये छोड़ के वो हो नहीं सकता है। जो सबको ही खाता है मैं वही खाती हूँ।
नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तित्व ने आपके लिए कहा कि आप इस शताब्दी के अंत की ओर एक शीशा लेकर के, मैं उनकी बात का भाव बता रहा हूँ, एक तरह का शीशा आप हाथ में लिए हैं और जिसमें कि जो समाज है, जो व्यथित समाज है, दमित समाज है, उसकी उसकी छाया आप लोगों को दिखा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा उद्गार था। लेकिन आपने अपने भाषण में कुछ और बात कही, आपने अपने भाषण में अगर मैंने सही समझा तो ये कहा कि जब एक नई शताब्दी शुरू हो रही है तो हमारे और जो आम आदमी है और जो एक मुख्य धारा का जो समाज है उसके बीच में एक अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है, और वो पर्दा जो है हमें विभाजित कर रहा है।
हम दोनों का बात में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने बोला मैं दमित समाज के बारे में लिखती हूँ, हाँ मैं उनके दर्पण हूँ, और मैं वही बोला जो शताब्दी अंत होने चला, लेकिन एक बहुत बड़ा दमित समाज है जिसका घर में अभी तक बाती नहीं जला।
महाश्वेता जी इस दुर्लभ भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ललित मोहन जोशी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
और आइए अब खबरें सुनते हैं रियो ओलंपिक से।
beloved. Real update.
रियो ओलंपिक की खबरें लेकर के आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं, साथ ही नॉरिस प्रीतम सीधे रियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नॉरिस जी और आदेश जी, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले हम चलते हैं नॉरिस जी के पास और पूछते हैं कि भारतीय खेमे से अभी तक कोई खुशी की खबर तो नहीं आई है, वहाँ पर पत्रकार और बाकी लोगों के क्या हाल चाल हैं जो इतने तामझाम के साथ वहाँ गए हुए हैं?
खुशी की बहुत बड़ी खुशी की खबर तो नहीं है, हालांकि जो आज डे टू दूसरा दिन था वो बहुत निराशाजनक रहा। शुरू में कम से कम हमारी हीना सिद्धू जो थी वो क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई, फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो एक तरह से दूसरे दिन निशानेबाज जो थे वो उन्होंने निराशा दी हमें, तो वो एक वो थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कम से कम आर्चरी से, तीरंदाजी से खुशी की बात ये थी कि महिला टीम ने हमारी क्वार्टर फाइनल में एंटर कर लिया और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कोलंबिया को 5-3 से हराया। लक्ष्मी रानी मांझी, बम्बई अलाश्राम और दीपिका कुमारी ने, और बाहर ब्राजील के समय से करीब 3:15 पर उनका रशिया से क्वार्टर फाइनल है। लेकिन साथ ही यह अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ ही बुरी खबर यह कि अभी थोड़ी देर पहले, आधे पौने घंटे पहले, बहुत तेज तूफान रियो में आया हुआ है और हल्की बारिश की संभावना भी, बहुत तेज आंधी चल रही है। मैं घर में बैठा हुआ था, सारे शीशे दरवाजे हिल रहे थे, चीजें गिर रही थी। तो और ये तीरंदाजी ऐसा खेल है जो इन चीजों से, जो नेचुरल एलिमेंट से, जो हवा तेज चलेगी तो तीर किधर जाएगा, अब ये पॉक पक जिसे बोलते हैं, अगर कहीं भारतीय टीम के समय दोबारा तेज गति से हवा चल गई तो मेरे ख्याल है बहुत बुरा होगा। ये तो अब ऊपर वाले को, मेरे ख्याल है हमें
जी,
पूरे भारत को।
नॉरिस जी, नॉरिस जी, आदेश जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं।
नौरी साहब, लंदन ओलंपिक्स के दौरान भी ऐसा हुआ था जब दीपिका कुमारी दुनिया की नंबर एक महिला निशानेबाज थी और तब व्यक्तिगत इवेंट में भी उनका एक तरह से दिन ही खराब हो गया था, तो आपको लगता है कि वाकई जो एक फोबिया सा हो जाता है फिर भारतीय तीरंदाजों के लिए, तो वाकई काफी मुश्किल की घड़ी है इस समय ब्राजील में?
नहीं आदेश जी, देखिए फोबिया तो होता है जो अपने आप एक क्रिएट करा हुआ होता है कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तूफान की जो आ रहा है।
जी, तूफान की वजह से जो,
हाँ, अब वही देख के उन्हें फिर याद आ जाएगा कि अरे वहां भी ऐसा हुआ था, तो कहीं ये गड़बड़ हो सकती है और काफी तेज हवा चल रही है। तो अब देखना यही है कि भारत जब मारता है तीर, जिस वक्त भारतीय खिलाड़ी, उस वक्त क्या हवा का रूप होता है। अगर उस वक्त हुआ तो मुझे लगता है कि इधर उधर तीर जाएंगे और बहुत ही, मतलब एक भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए, भारत की दृष्टि से तो बहुत एक अच्छी खबर नहीं है तूफान का आना इस वक्त यहाँ पर।
और एक और अच्छी खबर महिला हॉकी टीम के साथ भी नहीं है, क्योंकि जापान ने उन पर 1-0 की बढ़त बना ली है। कहीं इस मैच में भारत का सायोनारा तो नहीं हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि वापसी की उम्मीद है?
नहीं, मुझे लगता है कि ये महिला टीम इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में जिसे बोलते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा हो। कम से कम हमें शुभ शुभ बोलना चाहिए, जैसे कि हम आपस में अक्सर भारत में बोलते रहते हैं, तो आजेश जी शुभ शुभ बोलिए और भारत के जितने सुनने वाले हैं बीबीसी के, वो भी शुभ शुभ बोले, तो कम से कम हॉकी में और तीरंदाजी में आज हम कम से कम हंसते हुए लौटे स्टेडियम से।
जी नरेश जी और आदेश जी, समय की थोड़ी सी कमी है तो हम अगले कार्यक्रम में फिर आपसे जुड़ेंगे और तब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम ये चर्चा करेंगे कि उस दौरान की जो दुनिया के बाकी टीमें हैं वो क्या कर रही हैं, कैसा प्रदर्शन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों को लेकर राजनीति बंद करने की अपील की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मोदी ने कहा कि अगर हमला करना है तो दलितों पर नहीं बल्कि उन पर किया जाए। थाईलैंड के चुनाव आयोग के मुताबिक देश के मतदाताओं ने नए संविधान को मंजूरी दे दी है, इसके मुताबिक देश की राजनीति में सेना का दखल बना रहेगा। फ्रांस के नीस शहर में बीते महीने हुए हमले में मारे गए लोगों की याद में आयोजित समारोह में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। सीरिया के अलेपो शहर से मिली रिपोर्टों के मुताबिक विद्रोही सेनाएं सरकारी सेना की घेरेबंदी तोड़ने में कामयाब रही हैं। इसके बाद विद्रोहियों के प्रभाव के इलाके में थोड़ी मदद पहुंच सकी है, हालांकि सेना ने ऐसे दावों का खंडन किया है। नाइजीरिया सेना के मुताबिक बोसों में घात लगाकर हुए हमले में कम से कम 11 सैनिकों की मौत हो गई। रियो ओलंपिक में भारत की महिला तीरंदाजी टीम रिकर्व मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे वात्सल्य राय और आज स्टूडियो संभाला है शाकिर आलम ने। आपसे डेढ़ घंटे बाद घटनाचक्र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।